बैठे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना। चलो जय 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 जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा। सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।
हम गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
हम गाएं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम गाएं
जय जयकार करो रे लोगो, अब जल्दी ही आएगा यहोवा।
सामने आओ पास उसके तुम करो आराधना।
प्यार हमें वो कृपा वो करता हमेशा, वो है मेरा सहारा, वो ही है मेरी आशा। परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।
परमेश्वर यहोवा हम उसके बच्चे हैं, वो है मेरा पिता।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे सभी नए मित्रों का और उन मित्रों का भी जो हमारे कार्यक्रम को निरंतर सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों हम नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि बुद्धि हम में से प्रत्येक के लिए कितनी आवश्यक है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं आज जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, प्रत्येक के जीवन से बोली और बातचीत कीजिए, ताकि एक एक जीवन आपके वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव या तंगी में हैं, आप उनकी भी सुधि लीजिए। इस घड़ी हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम बुद्धि के विषय में आगे देखेंगे। अब बुद्धि ने अपना स्कूल खोल दिया है। युवक बुद्धि के स्कूल से 10वीं पास करता है। हम इसके लिए आभारी हैं और सब कुछ तैयार है। हम इस स्कूल में देख सकते हैं, उस स्कूल का घंटा बजने वाला है। तो आइए देखें बुद्धि का स्कूल। नीति वचन 9 अध्याय उसके 1-5 पद में हम पढ़ते हैं, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। मेरे मित्रों, बुद्धि ने घर बनाया है या बुद्धि की पाठशाला है। ध्यान दीजिए कि उसमें 7 खंभे हैं। ये 7 खंभे पूर्णता के प्रतीक हैं। यह पाठशाला PhD तक की शिक्षा देती है। जी हाँ, मैं आधुनिक शिक्षा का महत्व कम नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि यीशु ने अशिक्षितों को अपना शिष्य बनाया था। मुझे एक व्यक्ति ने पत्र में बड़ी फटकार लगाई कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लगाता हूँ। प्रभु यीशु के शिष्यों में से किसी के पास भी PhD नहीं थी। PhD आपके परिश्रम का वर्णन करती है, इसलिए परिश्रम करने वालों को PhD लगाने का अधिकार है। आज की शिक्षा पद्धति पर आश्चर्य होता है। एक युवक MA इतिहास कर रहा है। उससे कहा गया है कि वह तिथियों को और नामों को भूल जाए तो उसे उस युग का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। यह ऐसी शिक्षा है जिसमें मनुष्य के पैर जमते नहीं हैं। मेरे विचार में तो तथ्य आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। आज कुछ स्कूल इस सिद्धांत पर चल रहे हैं। जहां तक 12 शिष्यों की शिक्षा की बात है, यीशु के साथ 3 वर्ष रहने वाला मनुष्य अशिक्षित हो ही नहीं सकता। उन्होंने संसार के सबसे बड़े गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। प्रेरित पौलुस अपने युग की पाठशालाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त था। उसे कोई अज्ञानी कह ही नहीं सकता था। स्मरण रखें कि बुद्धि प्रभु यीशु है। वह आपको पूर्ण शिक्षा दे सकता है। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। अब स्कूल जाने और पढ़ने का समय आ गया है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि इस युग में भी हमें उसका निमंत्रण दिया गया है? विवाह भोज तैयार किया गया है और सब अतिथियों को निमंत्रण भेजे गए हैं, परंतु अनेकों ने आने से मना कर दिया। तो सेवक मार्गों से लोगों को लेकर आते हैं। इस घटना को हम मतिरचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 1-14 पद में पढ़ते हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि बुद्धि को सड़कों पर से लोगों को लाना पड़ता है। हमारा आज का संदेश है 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 20 पद। लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आज संपूर्ण इतिहास में सबसे अधिक वचन का प्रचार हो रहा है। बुद्धि की पाठशाला में आने के लिए संपूर्ण विश्व में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के पास आएं। हम नीति वचन 9 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। कुछ लोग सुनेंगे नहीं, वे ठट्ठा करने वाले हैं, उनके साथ समय गंवाना ठीक नहीं है। लगभग प्रत्येक कलीसिया में एक ना एक ऐसा गुट होता ही है जो परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। क्या हमें उन्हें वचन सुनाते रहना है? जी नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि हमें सुअरों के आगे मोती नहीं डालने हैं। अब अगले 3 पदों में देखिए, कुछ टीकाकारों के विचार में इन पदों को यहां नहीं होना चाहिए, वे अलग से यहां जोड़े गए हैं। मेरे मित्रों, उनका स्थान यही है। नीति वचन 9 अध्याय उसके 7-9 पद में पढ़ते हैं, जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर का वचन मनुष्यों को सुनाएंगे तो वे आपसे घृणा करेंगे। युगों से ऐसा ही होता आ रहा है। कुछ लोग इतने अधिक सतही, खाली और अज्ञानी होते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को ग्रहण ही नहीं करेंगे। आज आप किसी मुक्ति विचारवादी मनुष्य के बारे में सुनते हैं कि वह कैसा उदार विचारों का मनुष्य है, परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसो ही ने हमारे स्कूलों से धर्म को बाहर किया है। वे रूढ़िवादियों को धर्म के अंधे कहते हैं। मैं सच कहूं तो मुझे स्कूलों में विकासवाद की शिक्षा पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि मुझे भी बाइबल सिखाने की अनुमति दी जाए, परंतु उदार विचार रखने वाले इसकी अनुमति नहीं देंगे। उनके पास कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना हो, वे अज्ञानी ही हैं। यदि वे परमेश्वर के वचन की शिक्षा ना दें तो भी मैं उन्हें पिछड़ा हुआ ही कहूंगा। सीधी सी बात तो यह है कि थोथा चना बाजे घना। सच तो यह है कि मेरी भेंट आज तक किसी उदार विचार वाले से नहीं हुई जो यह नहीं सोचता हो कि वह बुद्धिमान नहीं है। वह सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, परंतु वास्तव में वह इस सब कुछ नहीं जानता है। जी हाँ, वह वास्तव में ना तो कुछ जानता है और न ही उसे ज्ञान है। मनुष्य जितना अधिक जानता है उतना ही अधिक वह अपने अज्ञान और अपनी सीमाओं को पहचानता है। एक महान प्रचारक जिसके पास मेरे विचार में मनुष्यों में प्रवीण बुद्धि थी, प्रायः कहा करते थे, मैं जितना अधिक बाइबल अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मुझे बोध होता है कि मैं बाइबल के बारे में कैसा अज्ञानी हूं। मेरे मित्रों, आप बाइबल का अध्ययन करें और आपको यह बोध ना हो कि आप बाइबल के बारे में कैसे अज्ञानी हैं। जी हां, आप अपने अज्ञान के बोध के बिना बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। परंतु ठट्ठा करने वालों को वचन के अध्ययन में रुचि नहीं होती है। उसे वचन सुनाकर आप अपना समय ना गवाएं। नीति वचन 9 उसके 10 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे मित्रों, ऐसा लगता है कि हमने यह पद पहले भी पढ़ा है। जी हाँ, जब बालक घर में था तब उसका पहला पाठ था नीति वचन 1 अध्याय उसका 7 पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। अब वह जीवन और बुद्धि के कॉलेज में है, वह बुद्धि के विश्वविद्यालय में नया है और उसका पहला पाठ है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हम सबका आरंभ यहीं से होता है। यदि आपने यहां से आरंभ नहीं किया है तो आपने अभी आरंभ ही नहीं किया है। यह पुस्तक कहती है कि इस संसार में मनुष्य परमेश्वर के बिना निर्वाह करे तो वह मूर्ख है। हम आज सुरक्षा की इतनी अधिक चिंता करते हैं, सड़कों पर सुरक्षा, घर में सुरक्षा, बुढ़ापे में सुरक्षा आदि। हम बीमा करवाते हैं और उसकी किस्तें चुकाते हैं। यह एक बुद्धिमानी की बात है मेरे भाइयों, यह तो ठीक है, परंतु अनंत जीवन के बारे में आपने क्या सोचा है? क्या आपने उसकी कोई योजना बनाई है? क्या आपके पास अनंत जीवन का बीमा है? ओह, परमेश्वर से रहित जीवन जीना कैसी मूर्खता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन आपको इस पृथ्वी पर से जाना है? आपको पता है कि आप कहां जाएंगे? क्या आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं? जिस प्रकार आप इस संसार में रहते हुए अपने जीवन के लिए जीवन बीमा करते हैं, अपने बच्चों और परिवार के लिए, परंतु आपके अपने जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 9 अध्याय के 11 और 12 पद में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठड्ढा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। जी हाँ, यदि आप बुद्धिमान हैं तो अनंत जीवन के लिए तैयारी कर लें। यदि आप ठट्ठा करें और इन बातों की निंदा करें तो आप दंड के लिए भी तैयार हो रहे हैं। यह कठोर लगेगा, परंतु किसी को तो कहना ही होगा। आप नरक के मार्ग पर अग्रसर हैं। यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। यदि आप अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं तो आप ही हानि उठाएंगे, इसके जिम्मेदार आप हैं। मुझे एक नास्तिक ने कहा, भाई साहब, मैं इस अनंत जीवन और प्रभु यीशु के बारे में चिंता नहीं करता, करने वाले करते रहें। मैंने उससे कहा, मान लीजिए आप सही हैं और अनंत जीवन नहीं है, तो आप और मैं एक ही स्थान पर हैं। परंतु यदि मैं सही हूं और आप गलत हो तो मेरे मित्र, आप संकट की स्थिति में हैं। एक और नास्तिक था, उसने मुझसे कहा, मैं अति संतुष्ट होता यदि यह तथ्य ना होता कि बाइबल सही है। जी हाँ, हो सकता है यह उस हर एक मनुष्य के लिए एक भयानक सत्य है जो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है। मेरे मित्रों, अब हम आगे बढ़ करके देखेंगे मूर्ख स्त्री की पाठशाला। नीति वचन 9 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, मूर्खता रूपी स्त्री बक बक करने वाली है, वह तो भोली है और कुछ नहीं जानती। देखिए, मूर्खता का भी अपना स्कूल है, अनेक स्कूल हैं। हम आगे पढ़ेंगे नीति वचन 9 उसके 14 पद में, वह अपने घर के द्वार में और नगर के ऊंचे स्थानों में अपने आसन पर बैठी हुई है। उन्हें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही वहां आ जाता है। हजारों मनुष्य इन स्कूलों में जाते हैं। नीतिवचन 9 उसके 16 से 18 पद में लिखा है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवताहारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। ओह, कितने विद्वान कहलाने वाले वहां गए हैं और उनका दुखद अंत हुआ है। लॉर्ड बायरन ने अपने व्यभिचारी जीवन के अंत में लिखा, मेरा जीवन पीला पत्ता है, प्रेम के फूल और फल झड़ गए, केवल कीड़े घुन और दुख बचा है। बायरन के पास इस संसार का सब कुछ था, रूप बुद्धि नाम धन संपत्ता सब कुछ, परंतु उसके अंतिम वचन थे, केवल कीड़े धुन और दुख बचा है। मूर्ख स्त्री के स्कूल ने उसकी यह दशा की थी। एक प्रसिद्ध सिनेमा सितारा था, उसने विश्व सुंदरियों से विवाह किया था, परंतु एक दिन उसने वृद्धावस्था में आत्महत्या की। उनकी अंतिम टिप्पणी थी, मैं इस जीवन से ऊब गया हूं। यह कैसी त्रासदी है। मूर्खता की पाठशाला अब भी चल रही है, वहां प्रवेश पाने वालों की लंबी प्रतीक्षा सूची है, परंतु वह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के नेवताहारे अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 9 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 10 में देखेंगे सुलेमान के नीति वचन, उसी ने लिखे और क्रमबद्ध भी किए हैं। यहां से नीति वचनों के संग्रह का दूसरा मुख्य भाग आरंभ होता है। इसमें हम देखेंगे कि युवा विद्यार्थी को जीवन के मार्ग में चलने के निर्देश दिए गए हैं। ये शिक्षाएं हमें प्रभु यीशु की पाठशाला में ग्रहण करना है। तो आइए हम पढ़ें नीति वचन 10 उसके 1 पद को। लिखा है सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। जब एक बालक अपनी कक्षा में प्रथम आता है या खेल कूद में पुरस्कार पाता है या कहीं किसी काम में नाम कमा करके आता है, तब उसका पिता सबसे अधिक उसकी चर्चा करके बहुत खुश होता है। मेरा पुत्र क्रिकेट टीम का कप्तान है, या मेरा पुत्र पीएचडी करके कॉलेज में पढ़ा रहा है, या मेरा पुत्र इंजीनियर है। अब यदि एक बालक कक्षा में भी फेल हो जाता है और बड़ा होकर नौकरी नहीं करता, तो उसका पिता किसी से उसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता है, वह अपना मुंह बंद रखता है। परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। ऐसी स्थिति में मां को दुख होता है, पिता तो चुप रहकर अलग हो जाता है। यह ऐसे जीवन का कैसा चित्रण है। पुत्र या तो बुद्धिमान हो सकता है या मूर्ख होगा। नीति वचन 10 उसके 2 पद में लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता है। अति धनवान मनुष्यों ने मरते समय अपना धन यहीं छोड़ दिया है। वे न तो उसे अपने साथ ले जा पाए और न ही उसका इस पृथ्वी पर आनंद ले पाए। धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। मसीह हमारे लिए ज्ञान ही नहीं धार्मिकता भी हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है कि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तब हम पढ़ते हैं नीति वचन 10 के 3 पद में, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हर एक मनुष्य के लिए नीति वचन है और बाइबल के नायकों के चरित्र से मेल खाते नीति वचन भी हैं। धर्मी को यहोवा भूखों नहीं मरने देता। इस वचन में हमें यीशु का स्मरण आता है। उसे मिस्र के दास होने को बेच दिया गया था और ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर उसे भूल गया है, परंतु उसने परमेश्वर पर से भरोसा नहीं हटाया। हमने देखा है कि परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं। परमेश्वर ने ऐसा किया कि वह बंदी गृह में डाला गया और वहां से निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। हम नीति वचन 10 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कैसा अंतर है! कुछ विश्वासी अति उदार होते हैं तो कुछ अत्यधिक कंजूस। जो हाथ को खोलता नहीं वह सदैव कमी में ही रहता है। इसके विपरीत एक उदार मनुष्य का जीवन भरपूरी का होता है। मेरे प्रियो, आपके विचार में क्या यह पद अब्राहम का स्मरण नहीं कराता है? वह एक उदार मनुष्य था। उसने अपने भतीजे लूत से कहा कि उसे जो अच्छा लगे ले ले, जो बचेगा उसे वह ले लेगा। अब्राहम को चुनाव करने का पहला अधिकार था। अच्छी भूमि यर्दन की घाटी थी। लूत ने सोचा होगा कि अब्राहम कैसा मूर्ख है। लूत ने स्वार्थ से भरकर सबसे उत्तम भूभाग को चुना, परंतु अंत में वह नाश हुआ। हम पाते हैं लिखा है, कामकाजी लोग धनी होते हैं। बाइबल में 2 शब्द साथ साथ नहीं चलते, विश्वास और आलस्य। आलसी विश्वासी में सच्चा विश्वास नहीं होता है। जो परिश्रमी है वह कामकाजी होता है। इससे मुझे प्रेरित पौलुस का स्मरण आता है। जब उसे परमेश्वर ने बुलाया तब उसने आलस के कारण विलंब नहीं किया। वह तुरंत उठा और परमेश्वर के कार्य में लग गया। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है और परमेश्वर से प्रेम रखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यहोवा भला है, उसकी करुणा हमेशा की है, उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहती है। हम उसकी प्रजा हैं और वो हमारा राजा है। यीशु मेरे दिल में हर संगीत सुहाना, हर
कृपा हो मुझ पर, गाऊं मैं तेरा तराना। यीशु मेरा सुर है, ताल है मेरा, वो है जीवन मेरा। यीशु मेरा